दिन भर 30 मई दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती पर आरोप तय।
इतने लोग आए थे, मानी अडवाणी जी, जोशी जी, सभी लोग निजी मुझलके पे छूट गए हैं। डिस्चार्ज एप्लीकेशन बचाव पक्ष की तरफ से हम लोगों ने मूव किया था।
मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से जानेंगे जेएनयू में क्यों कम की गई पीएचडी की सीटें।
आप जी मानोगे नहीं, जेएनयू में मैं लिस्ट नहीं दिखाना चाहता लेकिन है मेरे पास, एक एक प्राध्यापक के पास 15 है, 17 है, 20 है, 25 है, 30 भी है किसी के पास, तो ऐसे थोड़ी ना पीएचडी होती है।
और चर्चा होगी भारतीय क्रिकेट टीम के कोच अनिल कुंबले और कप्तान विराट कोहली के बीच अनबन की भी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत 12 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। लखनऊ में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने इनके खिलाफ आरोप तय कर दिए। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत बाकी लोगों ने कोर्ट में केस खारिज करने की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को जमानत दे दी है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण कानून में किए गए बदलावों पर रोक लगा दी है। बदलावों के जरिए कत्ल के लिए पशुओं की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर जर्मनी की आलोचना करते हुए लिखा है कि जर्मनी को नेटो के लिए जितनी रकम देनी चाहिए वो उतनी अदायगी नहीं करते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का जर्मनी के साथ व्यापार घाटा काफ़ी ज़्यादा है। इसके पहले बीते हफ्ते जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा था कि अमेरिका अब पूरी तरह भरोसेमंद सहयोगी नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रांस अटलांटिक साझेदारी जर्मनी के लिए अहम है। उन्होंने कहा, दूसरे साझेदारों की तरह अमेरिका के साथ बातचीत भी अहम है। ट्रांस अटलांटिक साझेदारी बेहद मायने रखती है और ताज़ा हालात के मद्देनज़र मैंने जो कहा था वो ये था कि यूरोप के पास कई कारण हैं कि हमें अपना भविष्य अपने हाथों में लेना चाहिए। ये थे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन चीफ माइक डबकी ने इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक डबकी ने 3 महीने पद पर रहने के बाद इस महीने की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। व्हाइट हाउस के एक सलाहकार के मुताबिक उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश यात्रा में मदद के लिए पद पर बने रहने का प्रस्ताव दिया था। डबकी को व्हाइट हाउस की मीडिया रणनीति में बदलाव के लिए लाया गया था। दक्षिण पूर्व नाइजीरिया के कई हिस्सों में क्षेत्र की आज़ादी की मांग के समर्थन में दुकानें और बाज़ार बंद हैं। क्षेत्र की आज़ादी की मांग उठाने वाले कार्यकर्ताओं ने अपने समर्थकों से कहा था कि वो घर पर ही रहें। इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ बियाफ्रा का ऐलान 50 साल पहले किया गया था। इसके बाद गृह संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। क्षेत्र के अकाल पीड़ित बच्चों की तस्वीर देखने के बाद ही मेडिसा सा फ्रंटियर यानी MSF संगठन बना था। संगठन के सह संस्थापक और फ्रांस के पूर्व विदेश मंत्री बेरनार कुशेनर ने BBC को बताया,
मुझे
अच्छी तरह से याद है, ये कम वजन वाला 5 साल का छोटा बच्चा था जिसका पेट बड़ा सा था। वो हमारे हाथों में दम तोड़ रहे थे। उनकी मदद करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि संघर्ष में लोग घायल हुए थे, वो संघर्ष कैसा था और बमबारी कैसी हुई थी, लेकिन उन बच्चों की स्थिति ने हमें सदमे में ला दिया था। ये थे फ्रांस के पूर्व विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। बांग्लादेश के अधिकारियों ने चक्रवात मोरा के खतरे का स्तर घटा दिया है। चक्रवात आज सुबह तट से टकराया, इसके असर से कम 5 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित क्षेत्र के हजारों लोगों ने सुरक्षित स्थानों में शरण ली है। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित सभी 12 अभियुक्तों पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। इन पर अब आपराधिक साजिश का मामला चलेगा। इससे पूर्व कोर्ट ने 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर सभी को जमानत दे दी थी। पूरे घटनाक्रम को बता रहे हैं लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में आज सुबह से ही गहमा गहमी थी और अदालत परिसर के अलावा पूरे रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कोर्ट के बाहर लोग बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उन प्रमुख 12 हाई प्रोफाइल अभियुक्तों का इंतजार कर रहे थे जिन्हें आज अदालत ने किसी भी हालत में हाजिर होने के निर्देश दिए थे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार बारी बारी से हाजिर होने के लिए अदालत पहुंचे। कुछ ही देर बाद बचाव पक्ष के एक वकील ने बताया कि फिलहाल इन सभी अभियुक्तों को जमानत मिल गई है।
सारे लोग निजी मुचलके पे छूट गए। 20,000 रुपए का ओरली उन्होंने कहा। लोग आए थे मानी आडवाणी जी, जोशी जी, सभी लोग निजी मुचलके पे छूट गए हैं। डिस्चार्ज एप्लीकेशन बचाव पक्ष की तरफ से हम लोगों ने मूव किया था।
हालांकि तब तक अदालत ने इनके खिलाफ आपराधिक साजिश न चलाए जाने की इनकी अपील पर अपना फैसला नहीं सुनाया था। कुछ ही देर बाद अदालत का ये फैसला भी आ गया और अभियुक्तों की अपील खारिज करते हुए अदालत ने आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी। इन लोगों के खिलाफ बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने और राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के आरोप हैं। अदालत परिसर में मौजूद बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना था कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में साजिश का केस तो कांग्रेस पार्टी के लोगों पर चलना चाहिए।
आप लोग भी कहीं न कहीं पूर्वाग्रही हैं। किसने साजिश की, मूर्तियां वहां किसने स्थापित की, तो कांग्रेस का नाम आएगा। ताला किसने तोड़ा, तो कांग्रेस का नाम आएगा। शिलान्यास किसने कराया, तो कांग्रेस का नाम आएगा। और ढांचा किसके कार्यकाल में टूटा, 9:15 बजे कल्याण सिंह इस्तीफा दे दिया था, नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे तो नरसिंहा राव के कार्यकाल में ढांचा टूटा और साक्षी महाराज को लपेट रहे हैं, आडवाणी को लपेट रहे हैं, हम लोगों को लपेट रहे हैं, कांग्रेस को लपेटना चाहिए, उस कांग्रेस को तो आप लपेट नहीं रहे।
वहीं इस मामले में प्रमुख पक्षकार जफर याब जिलानी का कहना था कि केस में जमानत मिलने का कोई बहुत महत्व नहीं है।
जो जमानत का ऑर्डर हुआ है कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं, ये रूटीन ऑर्डर है। एक रिक्वायरमेंट है लॉ का कि जब चार्ज फ्रेम होगा तो ये हाजिर होंगे। ऐसे ही एक स्टेज और है, 313 का बयान होता है, तो उसमें भी मुलजिमान को हाजिर होना पड़ता है, खुद जवाब देते हैं। तो इस लिहाज से इनको आज वहाँ कोर्ट में पेश होना था, अदरवाइज ये ऐसा केस नहीं जिसमें इनको जेल भेजा जाए।
इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मिलने के लिए खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आए, वरिष्ठ नेताओं को गुलदस्ता भेंट किया और इनके बीच काफी देर तक वार्ता भी हुई। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
आपने सुना कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी पर बाबरी मस्जिद ढाए जाने की साजिश रचने का मामला चलेगा। इसकी चपेट में केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी आ गई हैं। तो क्या सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले ने इन दोनों की राष्ट्रपति पद की संभावित दावेदारी के दावों की हवा निकाल दी है? यही सवाल हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने बीजेपी को लंबे समय से कवर करते आ रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल से पूछा।
मुझे ऐसा लगता है ये मीडिया के अंदर चर्चा है, लेकिन जो भाजपा की व्यवस्था है निर्णय लेने की, उसके अंदर अलग एक प्रक्रिया इसके लिए अपनाई जाती है और उस प्रक्रिया के अंदर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा उन्हीं की इच्छा जो है वो महत्वपूर्ण रहेगी कि वो उनका रुझान किसके लिए है। दोनों वरिष्ठ नेता हैं, दोनों भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं और आडवाणी जी तो किसी समय पार्टी के शीर्ष पुरुष रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जितने कारण उनको बनाने के हो सकते हैं, शायद उतने तो नहीं लेकिन कोई ना कोई कारण उनको न बनाने का भी हो सकता है। जैसे आडवाणी जी हैं तो ये माना जा सकता है कि वो काफी उम्र दराज हो चुके हैं तो इसलिए शायद नहीं बनाना चाहिए, कोई भी कारण रह सकता है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का कंफर्ट लेवल क्या है राष्ट्रपति जिनको बनाना है उन नेता के साथ, तो मुझे लगता नहीं, वो एक अलग विषय है, उसका इस केस से कोई ऐसा संबंध है। हाँ ये जरूर है कि अगर इस तरीके का मुकदमा चल रहा हो तो जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कैसे बनाएंगे, लेकिन वो न भी हो तब भी ऐसा नहीं है कि उनका राष्ट्रपति बनना तय है, यानी उनका उम्मीदवार बनाया जाना तय। उसके लिए और बहुत सी चीजें हैं जिनका महत्व रहे।
उमा भारती केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं अभी, तो उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ेगा?
अब देखिए, ये तो आप मान के चल ही सकते हैं, विपक्ष तो मांग करेगा कि वो इस्तीफा दें। तो उमा भारती का जहां तक व्यक्तिगत तौर पे सवाल है, उमा भारती उस तरीके की प्रखर यानी उग्र नेता अब नहीं है, उतना वेग नहीं है उनकी वाणी में या उनकी कार्यशैली में। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई नकारात्मक तौर पे नहीं है, कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य की वजह से, पार्टी से बाहर जाकर के वापिस आने की वजह से उसमें वो धार नहीं बची है जो किसी समय थी। तो हालांकि इस तरीके के जो अनुभव होते हैं नेताओं को, वो कहीं ना कहीं बड़े परिपक्व भी बनाते हैं। तो और कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो उनके ऊपर है नहीं, जो विपक्ष को उसका लाभ मिलेगा। और उमा भारती ऐसी नेता नहीं है जो बहुत आरोप लगे, बहुत मांग लगे उठेगी तो वो पद के साथ चिपकी रहेंगी, इस्तीफा दे भी सकते हैं, उस तरीके का उनका व्यक्तित्व है।
वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल से बात कर रहे थे प्रदीप कुमार।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
जर्मनी की यात्रा पर पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के साथ 8 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने हर 2 सालों में दोनों देशों के बीच होने वाली 4थी IGC यानी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में हिस्सा लिया। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी एक दूसरे के लिए बने हैं। विनीत खरे की रिपोर्ट।
यूरोपियन यूनियन में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा निवेशक है और भारत में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में व्यापार कर रही 1600 जर्मन कंपनियों में 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, और नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाओं में जर्मन निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले 2 सालों में जर्मनी की ओर से भारत में $2 अरब का निवेश आया है। आज होने वाली बैठक में विज्ञान और तकनीक मंत्री हर्षवर्धन, व्यापार मंत्री निर्मला सीतारमन, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने हिस्सा लिया। बातचीत के बाद एक पत्रकार वार्ता में नरेंद्र मोदी ने कहा,
वी आर मेड फॉर ईच अदर। 125 करोड़ का हमारा देश है, हम ग्लोबल बेंचमार्क की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। 800 मिलियन यूथ है, स्किल डेवलपमेंट में जर्मन के पास महारत है, हम इसमें मिलकर के काम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें जर्मन की एक विशेषता है, दुनिया इनोवेशन के लिए ही और इनोवेशन के बिना दुनिया कभी आगे बढ़ नहीं सकती।
भारतीय अर्थव्यवस्था में जर्मनी के योगदान पर मोदी का कहना था,
रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारा बहुत ही मजबूत सहयोग बना है। भारत में बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लेकिन उसका एक्सपांसन, उसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, उसका मॉडर्नाइजेशन, रेलवे के स्टेशनों का आधुनिकीकरण, ये सारे विषय उसके साथ जुड़े हैं। जर्मनी ने उसमें काफी महारत हासिल की है, हमें उसका सहयोग मिल रहा है। भारत नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दे रहा है, ग्लोबल बेंचमार्क से हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाना चाहते हैं।
अपनी यात्रा के पहले दिन नरेंद्र मोदी और चांसलर मर्केल ने ब्रेक्जिट से उभरे परिदृश्य, व्यापार, जर्मनी में चरमपंथी हमले, चीन के एक बेल्ट एक रोड कार्यक्रम, पर्यावरण आदि मुद्दों पर बात की थी। जर्मनी में भारत की राजदूत मुक्ता दत्ता तोमर ने पत्रकारों को बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया और वहां विकास प्रक्रिया में अफगानिस्तान के नेतृत्व की महत्ता का भी जिक्र हुआ। PTI के मुताबिक तोमर ने कहा कि इस बातचीत में मर्केल ने बताया कि क्यों जर्मनी ने बीजिंग में एक बेल्ट एक रोड फोरम बातचीत में हिस्सा लिया। भारत की ओर से बताया गया कि क्यों वो इस परियोजना के खिलाफ है। इस पत्रकार वार्ता में चांसलर मर्केल ने कहा, कल शाम को हमारी कई मुद्दों जैसे आतंकवाद पर बात हुई, आतंकवादी घटनाओं का प्रभाव हम सब पर, चाहे वो यूरोप में हो या फिर भारत में, सभी पर पड़ता है। भारत हमारी कई विषयों पर मदद करता रहा है। ये थे चांसलर मर्कल के शब्द। मर्कल ने भारत को भरोसेमंद साथी बताया। इसी हफ्ते वो चीन के प्रीमियर ली खचियांग से भी मिल रही हैं। जर्मनी के बाद नरेंद्र मोदी स्पेन, फ्रांस और रूस भी जाएंगे। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात से इनकार किया है कि उनके मंत्रालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दबाव है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि जब उन्होंने विवादों में रहे एचआरडी मंत्रालय का जिम्मा संभाला था तब उन्हें यहां की समस्याओं की जानकारी थी और उन्होंने संवाद के जरिए इसे दूर भी किया। सुनिए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से प्रकाश जावड़ेकर की खास बातचीत।
आपने कई दफा कहा है कि सतत विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए उच्च शिक्षा में रिसर्च की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो बहुत अहम है, लेकिन दूसरी तरफ आपने जेएनयू ऐसी जगहों पर एमफिल पीएचडी सीट्स में जो कट्स हुए हैं उसको
नहीं कट नहीं हुए, वो एक एबरेशन था, वो करेक्ट किया है, क्योंकि देश के 800 विश्वविद्यालय है जो यूजीसी के नियमों का सालों से पालन करते हैं। एक ही विश्वविद्यालय था जेएनयू में जहाँ नहीं हो रहा था। एक अध्यापक दुनिया में 2 या 3 छात्रों को ही गाइड करता है पीएचडी के। हमारे यहाँ ज्यादा पीएचडी होने चाहिए इसलिए और प्राध्यापक कम है इसलिए हमने प्राध्यापक को 8 करने का परमिशन दिया कि 8 स्टूडेंट को गाइड करें। ये भी बहुत लोड है, लेकिन आप जी मानोगे नहीं, जेएनयू में मैं लिस्ट नहीं दिखाना चाहता लेकिन है मेरे पास, एक एक प्राध्यापक के पास 15 है, 17 है, 20 है, 25 है, 30 भी है किसी के पास। तो ऐसे थोड़ी ना पीएचडी होती है। तो हमने नियम जो है दुनिया में है और कोर्ट ने कहा कि ये सही है। दुर्भाग्य से जेएनयू जैसे प्रगतिशील विश्वविद्यालय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दिव्यांगों की भर्ती नहीं हुई थी, ये रिक्तियां रही। अब हम कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इन प्राध्यापकों की भर्ती। इन भर्ती दिसंबर के पहले पूरी हो जाएगी, तो दिसंबर को एक्चुअली पिछले साल से ज्यादा पीएचडी की सीटें हो।
आपके कार्यकाल में कम और उससे पहले थोड़ा ज्यादा, लेकिन एनडीए सरकार में एक तरह से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर थोड़ा सा ऐसे आरोप लगे हैं कि वो थोड़ा उस पर हावी हुई है, एचआरडी वाइस चांसलरों की नियुक्ति पर सिलेबस चेंज करने के लिए।
नहीं, हमने कोई तो सिलेबस तो कभी, देखो यूनिवर्सिटी का सिलेबस बोर्ड ऑफ स्टडीज में तैयार होता है। हम उनको कह रहे हैं कि हर साल रेलेवेंट सिलेबस करो, वो निर्णय उनको लेना है। अब हमने एक पहल की कि AICT के द्वारा इंजीनियरिंग का अभ्यासक्रम, मॉडल अभ्यासक्रम हम हर साल नया घोषित करेंगे कि हर साल इंजीनियरिंग में दुनिया में क्या चल रहा है, उसी तेजी से हमें शिक्षा में बदलाव लाना है तो वो लाएंगे। लेकिन ये यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता है, उस पर हम दखल नहीं
देंगे। लोग कहते हैं कि कोई पैटर्न सा दिखता है, कोई एजेंडा सा,
कोई है ही नहीं। एजेंडा एक ही है, शिक्षा एक राजनीतिक एजेंडा नहीं सबका है, क्योंकि 70 करोड़ लोग डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। 30 करोड़ लगभग स्टूडेंट्स है और उनके अभिभावक है, पेरेंट्स है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बहुत
वो एक दो दिन में जी, 2-3 दिन में ये कमेटी नहीं आएगी और कमेटी काम शुरू करेगी। लगभग बहुत सारा काम सेक्रेटरियल वर्क कराया है, दुनिया का सबसे बड़ा कंसल्टेशन प्रोसेस इसके लिए हुआ है।
क्या फोकस होगा, कुछ बताएं कि
वो फोकस है? एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, सामाजिक न्याय, गुणवत्ता में सुधार, जवाबदेही और एक अफोर्डेबिलिटी, गरीब को भी शिक्षा से वंचित न रहना पड़े अगर मेरिट है।
एक आम धारणा बनती जा रही है तमाम इंटेलेक्चुअल्स में और एक जो सिविल सोसाइटी में कि सरकार शायद इतिहास को एक नए तरीके से इंटरप्रेट करना चाहती है।
हमें कुछ बदला ही नहीं, इनका प्रॉब्लम ये हो गया है कि अब शिकायत करने जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। 2006 से किताबें चल रही है, बदलनी चाहिए लेकिन अभी बदली नहीं है।
कई संगठनों ने आपकी सरकार से मांग की है कि प्राइमरी एजुकेशन में मातृभाषा होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कई संगठन ऐसी मांग कर चुके हैं, क्या सरकार पर इस बात का थोड़ा दबाव है?
ऐसा है, दबाव कभी हमारे पास होता ही नहीं किसी का। सवाल इतना ही है कि मातृभाषा में शिक्षा करना या कौन से भाषा में सीखना, ये स्टूडेंट्स का चॉइस है। और हम मानते हैं कि 3 भारतीय भाषा का त्रिभाषा सूत्र क्या, तो संविधान के जो 22 भाषाएं है और एक लिंक लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इन 23 भाषाओं में से 3 भाषा कौन सी सीखना, ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तय करें। इससे ज्यादा आसान पॉलिसी हो ही नहीं सकती।
एक आखिरी सवाल, जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो राजनीतिक इतिहास है, क्या उसको लेकर बड़ा डिबेट रहता है? कुछ लोग कहते हैं कि वो एक पर्सपेक्टिव का था पिछले 50-60-70-80 सालों में, कुछ लोग कहते हैं उसको बदलने की जरूरत है, कुछ कहते हैं कि उसको नए सिरे से देखने की जरूरत है।
हम तो विवादों में पढ़ते ही नहीं, मैं अभी एक पोर्टल इस सप्ताह शुरू कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी की किताबों में कोई फैक्चुअल गलतियाँ है तो वो शिक्षक जो पढ़ाते हैं किताबें वही सबसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, उनको मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आपको कोई गलती नज़र आई या आपको कोई सुझाव देना है तो आप सुझाव दीजिए।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात कर रहे थे नितिन श्रीवास्तव। आज जारी बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजों में साइंस और आर्ट्स संकाय के 2/3 से अधिक छात्र फेल घोषित किए गए हैं। इन नतीजों के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। आज जारी बिहार इंटरमीडिएट के नतीजों पर सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
बिहार इंटरमीडिएट के नतीजे एक बार फिर से चर्चा में हैं। बीते साल जहां टॉपर्स घोटाले के कारण ये चर्चा में रहे थे तो इस बार खराब परीक्षा परिणामों के कारण ऐसा हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज जारी इंटरमीडिएट के नतीजों के मुताबिक इंटरमीडिएट साइंस में करीब 70% तो आर्ट्स में करीब 67% छात्र फेल रहे हैं। बिहार बोर्ड की लाज कॉमर्स संकाय के छात्रों ने बचाई जिसके करीब 74% छात्र आज सफल घोषित किए गए। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर.के. महाजन ने आज पटना में नतीजे जारी करते हुए कहा कि परीक्षा में नकल रोकने के कारण ऐसे परिणाम सामने आए हैं।
और बोर्ड के द्वारा सारी व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया, बार कोडिंग की व्यवस्था हुई ताकि ग्रेजुएशन में किसी तरह की गड़बड़ ना हो, सारे सुधारों को लागू करते हुए सामने रिजल्ट प्रकाशित हुआ है।
सिमुलतला आवासीय विद्यालय की खुशबू कुमारी साइंस टॉपर घोषित की गई हैं। कॉमर्स संकाय में पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रियांशु जायसवाल टॉपर रहे हैं तो वहीं आर्ट्स में समस्तीपुर के गणेश कुमार ने अव्वल स्थान हासिल किया है। साइंस और आर्ट्स में इस साल 2016 के मुकाबले आधे से भी कम छात्र सफल रहे हैं। 2016 में इंटरमीडिएट साइंस में करीब 67% छात्र सफल हुए थे। इन परिणामों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खराब रिजल्ट के आधार पर भाजपा ने बिहार सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कहते हैं कि छात्र स्कूल कॉलेजों में तो जाते हैं मगर वहां पढ़ाई ही नहीं होती।
इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का फेल होना इस राज्य के शिक्षा की चौपट व्यवस्था को दर्शाता है। एक तरफ साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्कूल भवन, शिक्षक बहाली सहित कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। 70% से अधिक उपस्थिति पर ही साइकिल और पोशाक की राशि दी जाती है। जब छात्र स्कूलों के अंदर में 70% से अधिक उपस्थिति दे रहे हैं उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में फेल होना, इस बात को यह कहता है कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है। स्कूलों के अंदर में क्वालिटी शिक्षा का खराब हो गया है, क्वांटिटी तो बढ़ गया है, छात्र छात्राओं की संख्या स्कूलों के अंदर में बढ़ गई है।
दूसरी ओर इस बार के नतीजों में टॉप करने वाले छात्रों को अंक भी अन्य बोर्ड्स के मुकाबले कम हासिल हुए। किसी भी संकाय के टॉपर्स को 90% अंक नहीं मिले जबकि CBSE और दूसरे बोर्ड्स में हजारों की तादाद में 90% या इससे ज्यादा अंक छात्र स्कोर कर रहे हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि बिहार के छात्र जब राज्य के बाहर के यूनिवर्सिटीज में दाखिले की कोशिश करेंगे तो वहां भी उन्हें अच्छे संस्थानों में दाखिला मिलना मुश्किल होगा। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
और अब कश्मीर पर हमारी विशेष सीरीज। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की सुमायरा की शादी सरहद पार कर वहां गए भारत प्रशासित कश्मीर के एक चरमपंथी से हुई। 2011 में उमर अब्दुल्ला सरकार का एक सरेंडर स्कीम लेकर आई जिसके तहत ऐसे चरमपंथियों को वापस भारत लौटने का मौका दिया गया। जब पति ने भारत वापस आने का फैसला किया तो वो भी साथ आ गई, पर सैकड़ों और सरेंडर्ड चरमपंथियों की तरह ये लोग गैर कानूनी रास्तों से लौटे और इस स्कीम का फायदा ही नहीं उठा सके। 2 महीने पहले पति चल बसे और अब सुमायरा यहां फंस गई हैं। 5 साल से वो अपने वतन लौट ही नहीं पाई हैं। सुने उनकी कहानी उन्हीं की जबानी।
हम लोगों ने बहुत गलती की है, ये शादी की है कश्मीरियों के साथ।
मेरी शादी है पाकिस्तान जफराबाद में, 2002 में मेरी शादी।
अब्दुल्ला यहाँ का कश्मीरी था, यहाँ से बहुत सारे लड़के गए थे तो उनके साथ ये भी चले गए। यहाँ कुछ यही कश्मीर के लिए गए थे, ये आज़ादी मांगते मांगते ये भी पाकिस्तान पहुँच गए, मुजफ्फराबाद में रह रहे थे।
वही सोचा कि ये कश्मीरी है, मतलब अपने मुल्क का है, मतलब कश्मीर और मुजफ्फराबाद जो है ये एक ही मुल्क है, हम लोगों ने शादी कर ली इसीलिए। यहाँ की गवर्नमेंट ने हम लोगों को बुलाया, ये लोग आ गए, तकरीबन 450 फैमिली आई हुई है, तो हम लोग आ गए। उन्होंने उस टाइम हम लोगों से वादे किए कि आप लोगों को वहाँ जगह दी जाएगी, मकान दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, सहूलत दी जाएगी, मतलब ये यहाँ कुछ हम लोगों को नहीं मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला। इस जगह ज़िंदगी क्या है, इस जगह कुछ ज़िंदगी नहीं। अपने पति के पीछे हम आ गए, अपने माँ बाप छोड़ दिए, बहन भाई छोड़ दिए, अपना मुल्क छोड़ दिया, हम लोग यहाँ आके बिल्कुल फंस गए। कैसे नहीं फंसे, फंस गए। आने जाने के लिए कुछ रास्ता मिल जाए फिर आए जाएंगे, ज़ाहिर है अपने माँ बाप से मिलेंगे, बहन भाइयों से मिलेंगे, फिर बेहतर हो जाए। हमें 5 साल हो गए, इस टाइम तक कोई इजाज़त वगैरह मिली नहीं जाने की। अकेले में बैठते हैं हम लोग को बहुत टेंशन है, हमें बिल्कुल अंदर से उन्होंने ख़त्म कर दिया, हम लोग खोखले अंदर से ख़त्म हो गए। अब तो क्या ज़िंदगी पति के बगैर, मतलब उसकी बीवी की क्या ज़िंदगी होगी, कुछ भी नहीं होगी, क्या ज़िंदगी। 5 बच्चे मेरे, और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में हम लोगों ने वो ज़मीन वगैरह का काम नहीं किया, इस जगह आके हमने ज़मीन के काम भी किए, सब कुछ किया। यहाँ के लोगों में, वहाँ के लोगों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब ये लोग जो हैं हम इनके खून के नहीं है, कोई रिश्ता हमारा है नहीं इनके साथ, ठीक है। इनका बेटे के साथ रिश्ता था, वो ख़त्म हो गया। अब अल्लाह जाने हम लोग सोचते हैं हम लोगों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो इतने दूर हैं, वो क्या कहेंगे, वो कुछ भी नहीं कहते। ज़ाहिर है अपनी जगह वो भी पछताते होंगे, हमने उस टाइम गलत फ़ैसले किए बेटियों के साथ, बेटियाँ अपनी निकाल दी दूसरे मुल्क पे, अब उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो नहीं देख रहे।
अपनी कहानी सुना रही थी एक कश्मीरी चरमपंथी की पत्नी सुमायरा। चैंपियंस ट्रॉफी का ताज बचाने के लिए इंग्लैंड पहुंची टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसी खबरें हैं कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और भारतीय टीम के कोच अनिल कुंबले के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। हमारे साथी वैभव दीवान ने वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन से बात की और इसका ब्यौरा मांगा।
देखिए, सुर्खियां जो आई है वो तकलीफ तो देती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय क्रिकेट जो है वो बहुत ही एक अपने उरूज पे है। जिस तरह से होम टीम का परफॉर्मेंस रहा होम सीजन में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ लगातार सीरीज जीती, और ऐसा कुछ कोई इशारा भी नहीं था कि कुछ आपस में कुछ नहीं बन रहा है कोच और कैप्टन के बीच। अब ये एक तो अफसोस वाली बात है अगर सही हो, और अगर ना सही है तो फिर ये तो अफवाहें हैं, तो ऐसी अफवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो भी है इस बात को इमीडिएटली जो BCCI है, जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है, और जो एडवाइजरी पैनल है जैसे सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और BBS लक्ष्मण, जिन्होंने कुंबले को अपॉइंट किया था, इसमें प्रोएक्टिव एक रोल प्ले करना चाहिए। एक जो भी है इंक्वायरी, आपस में इंक्वायरी, इन्फॉर्मल इंक्वायरी कर, और जो जहां जिस हद तक हो इस मामले को सुलझा दे जल्द से जल्द।
अयाज जी, ये जो भारतीय क्रिकेट टीम में जो खटपट है इसकी नींव क्या है, ये शुरू कब से हुई?
ये शुरू जब हुई, ये सब मामला, ये सब कहानियां ऐसी आनी शुरू हुई क्योंकि BCCI ने एप्लीकेशन बुलाए हैं एज फॉर अ चीफ कोच, और सबको लगा कि भाई अगर अनिल कुंबले ने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए तो फिर चीफ कोच की जरूरत क्या है, ऑटोमेटिकली उनका एक्सटेंशन क्यों नहीं हो गया। इसके दो तरीके थे, एक तो ये था कि बोर्ड जो है या BCCI जो है वो बिल्कुल प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है, क्योंकि पिछले साल जब अनिल कुंबले कोच बनाए गए थे तब भी ये प्रोटोकॉल जब ही स्थापित हुआ था, और 5-6 जो है वो एप्लीकेशन आए थे जिसमें रवि शास्त्री भी थे, और उन्हें उस वक्त अनिल कुंबले को चूज किया गया। जब उनका टर्म एक्सपायर होता है तो अगर आप इफ यू प्लेड बाय द बुक, अगर आप स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल फॉलो करते तो फिर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, और अनिल कुंबले को ऑटोमेटिक एंट्री भी मिल गई थी। दूसरा पहलू इसका ये था कि अनिल कुंबले से ना खुश है BCCI, इसी वजह से कुछ ना कुछ तकलीफें या कांटे उनके रास्ते में डालना चाहती है, इस वजह से एप्लीकेशन बुलाए, ताकि उन्हें अगर बनते भी हैं कोच तो ये पता चले कि आपने जो सैलरीज के बारे में या पैसे के बारे में जो उठाए थे सवाल कि कितना मिलना चाहिए प्लेयर्स को और उनको खुद को वगैरह, जो BCCI को पसंद नहीं आया था, ऐसे कुछ कहानियां निकली थी। अब ये जो है ये तो बिल्कुल एक तीसरा और बहुत ही गहरा पहलू बनता है कि कैप्टन और कोच में नहीं बन रही ये बात।
ये थे क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन। और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 12 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने पशुओं के खिलाफ क्रूरता निवारण कानून में बदलावों पर रोक लगा दी है। बीबीसी समाचार।